छोटी सी पुरानी मुरली है 28-62 की। रिकॉर्ड चला है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। बच्चे जानते हैं कि अब हमारा मर्जी वा जन्म है, अर्थात हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर गए। कहा भी जाता है आप मुए मर गई दुनिया। हम जीते जी मर करके फिर उस श्रीमत पर चलते हैं। बच्चों को समझाया गया है कि ये तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। भारत में प्रवृत्ति मार्ग था जो अब कलयुग के अंत में अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया है, और इसको फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनना है। बनाने वाला है बेहद का परमपिता परमात्मा। और वो प्रवृत्ति मार्ग होता ही सतयुग में है। सतयुग स्थापन करने वाला भी सत्य बाप है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपवित्र से पवित्र और पतित से पावन बनना है। ये कलयुग की दुनिया है पतित, और नई सतयुग की दुनिया है पावन। प्रवृत्ति मार्ग में मेल और फीमेल दोनों को पवित्र बनना है। ये सिर्फ संगम युग पर ही हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों ही पवित्र बने, क्योंकि अभी हम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया के मालिक बनते हैं। संन्यास धर्म को तो 1500 वर्ष हुए, वे कोई इसलिए नहीं आते हैं कि अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनावे। वो तो मार्ग है ही निवृत्ति मार्ग वालों का, वो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग का रिनाउंस करते हैं। लेकिन स्वयं निवृत्ति मार्ग के हैं, और हमको तो प्रवृत्ति मार्ग का रिनाउंस नहीं करना है। हमको तो जीते जी मर जीवा बनना है। बाकी रचना जो रची है उसकी संभाल तो जरूर करनी है। अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए फिर प्रवृत्ति मार्ग को ही पवित्र बनाना है, और इस बात में ही झगड़ा चलता है। जब हम अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र बनाते हैं, झगड़ा जरूर दो के बीच में होता है। वो सन्यासी लोग रेनाउंस करके जाते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और स्त्री भी भिख नहीं मांग सकती, और भारत की स्त्री न दूसरी शादी कर सकती है। ऐसे बहुत सन्यासी निकले हैं, उनमें भी बहुत से जवान सन्यासी भी निकल पड़े, और शंकराचार्य जैसे छोटे बच्चे भी सन्यास कर लेते हैं। तो वो छोटेपन के संस्कार होंगे पूर्व जन्म के, तो कहेंगे कि छोटेपन से ही उन्होंने संन्यास ले लिया। अब हम बच्चों को तो ये संन्यास धर्म के संस्कार नहीं डाले जाते हैं, यहां तो समझाया जाता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। जैसे राजा जनक मिसल, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अगर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को पवित्र बनाना है तो उसके लिए संगम जरूर चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंत में होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग संपूर्ण, और संपूर्ण अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग को संपूर्ण प्रवृत्ति मार्ग संगम पर ही बनाया जा सकता है। अपवित्र सृष्टि को ही बदलना है, नरक को अपवित्र कहेंगे और स्वर्ग को पवित्र कहा जाता है। ये हेल की दुनिया है, वो हेवन है, बाकी सूक्ष्म बतन में तो स्वर्ग नरक की बात ही नहीं है, ये स्थूल वतन की ही बात है। ये स्वर्ग और नरक यहाँ स्थूल वतन में होता है, और हिस्ट्री भी ऐसे ही बताती है। जब नई सृष्टि थी तो पवित्र देवताओं का राज्य था, अट्ठाईस आठ बासठ की वाणी का दूसरा पेज, तो जरूर पति दुनिया में आकर के वो पवित्र दुनिया स्थापन की होगी। ऐसे नहीं, वो पवित्र दुनिया में आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करेंगे नहीं। क्रिश्चियन धर्म यदि पहले से ही हो तो फिर क्राइस्ट आकर के क्रिश्चियन धर्म थोड़े ही स्थापन करेगा। तो वो पवित्र सृष्टि थी, यथा राजा तथा प्रजा, तो जरूर पहले कोई ने स्थापना की होगी जो फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। किसने स्थापना की होगी? स्थापना करने वाला जरूर एवर प्योर चाहिए। जो बाद में धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहे, विस्तार होता है तो सार थोड़ा थोड़ा निकलता जाता है। तो पहले है 108 की माला, तो समझना चाहिए पहले पहले अवश्य 108 राजाएं होते हैं जो अच्छी रीति परीक्षा में पास होते हैं। और होते भी कौन से युग में हैं? जरूर संगम युग में हुए होंगे, परीक्षा पास की होगी, राजाओं की वृद्धि भी होती है, क्योंकि सतयुग त्रेता दोनों में मिला करके प्रिंस प्रिंसेस 108 तो नहीं हो सकते। त्रेता के अंत तक फिर उन्हों की माला 16108 दिखलाते हैं। फिर प्रजा भी वृद्धि को पाती है, राज परिवार वृद्धि को पावेगा तो प्रजा भी वृद्धि को पावेगी। तो ये भी समझना चाहिए कि 8 अथवा 108 बनने वाले जरूर कोई बहुत तीखी आत्माएं होंगी। जो पक्के राजयोगी बनते हैं, अपने पास देखो जो गुप्त गोपिकाएं हैं वो बहुत हैं, जो माला में आने वाली हैं घर बैठे भी ज्ञान में उछलती रहते हैं। और गुप्त रहते हुए भी बहुतों को ज्ञान देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग संगम युग पर स्थापन होता है, वो रजोगुणी निवृत्ति मार्ग का संन्यास है, वो अलग है। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम कोई को दुख थोड़े ही देते हो। सात्विकता में दुख कहां से आया? उनका जो संन्यास है उनसे मनुष्य स्वर्ग के सुख नहीं ले सकते। ये दुनिया तो कलयुग अंत तक चलनी ही है और इस धर्म को तो सतो रजो तमो से पास होना ही है। तो ये समझाना चाहिए कि ये है प्रवृत्ति राजयोग, और दुनिया में मनुष्य जो भी योग लगाते हैं वो सब अपवित्र हैं। क्यों? क्योंकि वो दैहिक योग हैं, देह पांच तामसी तत्वों से बनी हुई है, तो उनके योग भी अपवित्र हो गए। कोई समझते हैं मैं राजा हूं तो जरूर उनका बुद्धि योग राजाई के साथ होगा, कोई का बुद्धि योग काठी से होगा तो उनको वो सीखेगा। तो हरेक बात में योग रहता है, मोची होता है तो अवश्य वो चमड़े से योग लगावेगा। मोची भी हुनर सिखलाते हैं तो उनका मोच का योग हो गया ना, चमड़े को मोड़ देते हैं ना, ये फिर हमारा है परमपिता परमात्मा के साथ योग, जिससे हम राजयोग सीखते हैं। ये मनबुद्धि का योग है और सबसे ऊंचा योग है उन सन्यासियों का है कर्म इंद्रियों का योग। कर्म इंद्रियां ऊंची या मन ऊंचा? मन को कहेंगे ऊंचा। 11 इंद्रियां हैं, उन 11 इंद्रियों में मुख्य है मन, और फिर साथ में उस्ताद की समझानी भी चाहिए। तुम्हारा उस्ताद है परमपिता परमात्मा, जो बुद्धि योग लगाने का है उस्ताद ही सिखाते हैं। और परमपिता परमात्मा से सीखने से तुम जरूर स्वर्ग में जावेंगे। उस्ताद से सीखते हैं तो उस्ताद की कमाई को भी याद करते हैं, फिर जो सीखने वाले हैं वो भी तीखे चले जाते हैं। सभी का उस्ताद से योग होता है और हमारा योग है उस उस्ताद से, जिसको गाइड बाप टीचर सदगुरु कहते हैं। जानते हैं कि वो बाबा अथवा साजन हमको लेने आया हुआ है, हमारी कर्म इंद्रियों को नहीं ले जावेगा, इंद्रियों को नहीं ले जावेगा, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ले जाने वाला है। हम उनके बंदे हैं, हम हैं ही मन बुद्धि रूपी आत्मा, ले जाने वाले बाप को टीचर और सुगुरु के रूप में हम जानते हैं, वो हमको शिक्षा देते हैं, माया पर जीत पाने की शिक्षा देते हैं। माया हमारे मन को बहलाए लेती है, बाप हमको छुड़ाते हैं माया से। उन्होंने फिर दिखाया है, कृष्ण अर्जुन का उस्ताद था, अब कृष्ण तो देहधारी, वो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली आत्मा का उस्ताद कैसे हो सकता? कहते हैं कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को इशारा देते थे, परंतु यहां तो वो हिंसा की युद्ध की बात ही नहीं है। यहां तो कहते हैं मनमना भव, मेरे में मन लगाओ, माया से बुद्धियों को तोड़ दो, मुझे याद करो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। फिर कहेंगे धारणा करो, जो कुछ तुमने मनमना भव अर्थात मेरे में योग लगाया है, उसकी फिर प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करो, अर्थात जो कुछ भी करो कर्म इंद्रियों से मेरे लिए यजन करो, उसको कहते हैं मध्याजी भव। तो ये समझने की बातें हैं। पहले है मनमना भव, बाद में है मध्याजी भव। इसमें बहुत कुछ लिखने करने का काम ही नहीं है। ये तो लिखते हैं कि जो सर्विस करने वाले हैं उनको ताजा माल भेज दें, गरम रोटी चाहिए तो तवा भी गरम चाहिए, गरम तवे से ताजी ताजी निकली हुई रोटी माउथ तक पहुंचे। तो यहां है सन्मुख सुनने वाली बात, अब्बल नंबर है सन्मुख सुनना, द्वयम नंबर है टैप रिकॉर्ड से सुनना, और तीसरा नंबर है मुरली कोई पढ़ करके सुनावे तब हम सुने, अथवा हम खुद पढ़ें तब धारण करें। तो मुरली पढ़ना हो जाता है थर्ड क्लास, सुनना सुनाना थर्ड क्लास है, टेप रिकॉर्ड ज्यों कहती हूं सुनाता है इसलिए सेकंड क्लास है, और सन्मुख जो कुछ सुनते हैं हम बाबा के वो हुआ फर्स्ट क्लास। तो बाबा तुमको ताजा माल देते हैं, वो ताजा माल टैप में भरने से भी अच्छा लगता है। समझते हैं शिव बाबा ने आकर के ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाया, हमको ताजा माल भेज दिया। अभी बाबा कहते हैं जैसे कर्म मैं करूंगा वैसे कर्म मुझे देख कर मेरे बच्चे भी करते रहें। वो तो भक्तों को भी संभालते रहते हैं, कौन? भगवान। और भक्तों को फल भी देते हैं, भक्ति का क्या फल देते हैं? भक्ति का फल देते हैं ज्ञान। तो हमको ज्ञान से फल देते हैं, और एक जन्म का फल नहीं देते हैं, 21 जन्म भविष्य सुख का फल देते हैं। वो तो दाता है, भक्ति मार्ग में उन्हों को राजी करते आए हैं, 63 जन्म। इस समय भी उनको हम राजी करते हैं, उनको राजी करने के लिए हम कितना दौड़म दौड़ करते हैं, इंद्रियों से भी दौड़म दौड़ करते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए दौड़म दौड़ करते हैं ना, और मन बुद्धि की भी दौड़म दौड़ करते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमको अल्पकाल का सुख देते आए हैं, साक्षात्कार हुआ अल्पकाल के लिए खुशी मिल गई, कोई 21 जन्म के लिए स्वर्ग थोड़े मिल जाता है। जिनको साक्षात्कार होता है वो कहेंगे कि नवदा भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है, जरूर भक्ति में तीखे होंगे। तो साक्षात्कार करा करके अल्पकाल का फल दे देते हैं ताकि वो थोड़े समय के लिए खुश हो जावे। और तुमने तो शुरू से भक्ति की है, तुमने माने किसने है, जो सन्मुख बैठने वाले हैं वो कितने होंगे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, शुरू माने द्वापर युग से ही।
84 लाख
ने
84 जन्म लेने वाले,
84 जन्म लेने वाले कितने हैं? वो तो 9 लाख भी होते हैं, परंतु 9 लाख तो सन्मुख नहीं सुनते है? 4.5 लाख सन्मुख सुनते भी हैं, लेकिन उनमें 4.5 लाख प्रवेश करके उनकी इंद्रियों से सुनते हैं सन्मुख, अपनी इंद्रियों से सन्मुख नहीं सुनते। तो असली प्राप्ति करने वाले कितने हुए? 4.5 लाख। वो अल्पकाल का सुख नहीं लेते, वो 84 जन्मों का भी सुख लेते हैं। ये देवी देवता सनातन धर्म सदाकाल का सुख देने वाला है, परंतु नंबर वार 21 जन्म का तो पूरा फल देते हैं। तो बताओ जो फल देने वाला है, झोली भरने वाला है, वो कोई है ना? कोई है ना क्या मतलब? ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, वो तो गया, अब झोली कौन भरने वाला? एक निराकार है झोली भरने वाला, परंतु साकार तो जरूर चाहिए, दो बिगर तो काम चल न सके। एक द्वारा हो तो भक्ति चल भी नहीं सकती है, और भक्ति भी तो जरूर दूसरे की जाती है, दूसरे की याद दिल में रखनी पड़ती है। बल कोई अपन को ऊंचा समझे तो भी भक्ति करेगा तो दूसरे से मिलने के लिए करेगा। अच्छा, ये मुटली तो अधूरी है, अगली एक और मुरली है, पुरानी मुरली ही है, 30-60-62 की। रिकॉर्ड चला है चलो चले माँ, सभी सेंटर्स के ब्राह्मण को भूषण नूर रत्नों ने ये गीत सुना। बच्चों को क्या करना चाहिए? जिनका भाषण नहीं चलता है तो ऐसे ऐसे गीत सुने, फिर उन गीतों का अर्थ करना चाहिए। कुछ न कुछ मेहनत तो करनी पड़े, मेहनत बगैर ऊंच पद कैसे मिलेगा? स्वर्ग जिसको हेवन कहते हैं उसको तो सभी याद करते हैं, तो ये गीत किस तरफ का इशारा कर रहे हैं? चलो चले माँ सपनों के गांव में, वो कौन सा सपनों का गांव है? ये स्वर्ग के सपने तुम अभी देखते हो? इस समय वो माँ जगदम्बा यहाँ चेतन में है और वहां उनके जड़ चित्र हैं। और ये बात भी तो सब मानते हैं कि पुनर्जन्म भी सभी लेते हैं, ये मम्मा बाबा भी पुनर्जन्म लेते हैं, जो भी ऊंचे से ऊंचे हो गए हैं वो सब पुनर्जन्म लेते लेते इस समय तमो प्रधान बन गए। ये कांटों की दुनिया है, तब तो कहते हैं माँ अभी चलो जहां कोई दुख गम ना हो, कोई दुख ना हो। तो ये सब बातें जगदम्बा अभी सुन रही है, वो जगदम्बा भी पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं तो जरूर पुनर्जन्म भी सिद्ध होता है, कर्म भी सिद्ध करते हैं। ऐसे कब कोई कह न सके पुनर्जन्म होता नहीं है, लिखा हुआ अभी 84 का चक्र। वो लोग 84 लाख कह देते हैं और हम 84 का चक्र कहते हैं। तो बच्चे चाहते हैं अब माँ चलो, क्योंकि ये जगदम्बा है, सारे जगत के मनुष्य इनको माँ कहते हैं। प्रैक्टिकल में अब वो जगदम्बा है जिनके लिए ही गीत है। जगदम्बा के लिए गीत है, ब्रह्मा के लिए गीत नहीं है। ब्रह्मा जीते जी स्वर्ग में नहीं जाता, जाता है नहीं जाता, तो ब्रह्मा के लिए ये गीत नहीं है। वही ब्रह्मा की सोल जिसके लिए मुरली में बोला है, ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु शरीर के साथ नहीं। शरीर छोड़ने के बाद यही ब्रह्मा की सोल कोई माता के चोले में प्रवेश करती है, तब उनकी पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। तो कल पहले भी ऐसे ही गीत होंगे और जगदम्बा भी हाजिर होगी, हाजिर होगी और गीत गावेंगे। कौन सी जगदम्बा? ब्रह्मा कुमारियां क्या समझेंगी कि ओम राधे जगदम्बा, परंतु वो तो शरीर छोड़ गई, हाजिर कहां से होगी? जो उसके सामने बच्चे कहें चलो चले मां सपनों के गांव में, जहां कोई गम न हो, तो जरूर जगदम्बा हाजिर होगी और उसके लिए गीत गाए होंगे। बुद्धि भी कहती है बरोबर मम्मा है तो बाबा भी है, जगदम्बा और जगत पिता। कभी भी तुम ब्रह्मा और सरस्वती को इकट्ठा चित्र नहीं देखेंगे। क्या कहा? दिलवाड़ा मंदिर में भी जगदम्बा का चित्र अलग रखा है और कोठरी में वो जगदम्बा पर्दे नशीन होकर के बैठी है। कहां की यादगार? पर्दा नशीन। कैसे? अभी भी अव्यक्त वाणी में बोला तुम्हारी अम्मा जगदम्बा कहाँ है? घूंघट में है, पर्दे के अंदर है। आदिदेव तो बाहर है, बाहर है माने देखने में आता है, और जगदम्बा घूंघट में है। ब्रह्मा सरस्वती की जोड़ी कभी दिखाते नहीं है। लक्ष्मी नारायण को जोरी में बिठा सकते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को नहीं बिठाते हैं, क्योंकि ये है मुखवंशावली, ये बेटी है ब्रह्मा की, तो उनको बाजू में कैसे बिठावेंगे? बाजू में तो पत्नी को बिठाया जाता है। और जगदम्बा को बाजू में बिठा रहे हैं, फिर तो सबको बिठाना पड़े। अभी वो जगदम्बा और जगत पिता बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माता है तो पिता भी है, परंतु ये माता पिता वंडरफुल माता पिता हैं। यहां बेटी को ही माता कहा जाता है, शास्त्र में भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तो बच्चे कहते हैं फूलों के गांव में ले चलो, और गांव तो जरूर मनुष्यों के लिए ही होंगे। इस सारी सृष्टि में मुख्य तो मनुष्य ही है ना, तो तुम जानते हो बरोबर प्रैक्टिकल में जगदम्बा है। बच्चे कहते हैं मां सपनों के गांव में ले चलो, तो तुम सब वहां चलने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हो जहां इस दुनिया में कोई गम नहीं होगा। जगदम्बा सरस्वती और ब्राह्मण बैठे परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनते हैं, शूद्र तो नहीं सुनेंगे। क्या कहा है माना? वो तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या शूद्र हैं? है जो सन्मुख बैठ करके परमपिता परमात्मा से ज्ञान नहीं सुनते हैं? अधूरा ब्राह्मण है माने शूद्र नहीं है। आप कहते अधूरा ब्राह्मण और बाप कहते हैं? जो सन्मुख बैठ सुनते हैं वो हैं जगदम्बा सरस्वती ब्राह्मण, जो परमपिता परमात्मा से ज्ञान सुनते हैं, शूद्र नहीं सुनते हैं। शूद्र भगवान बाप को पहचानते ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। क्या? किसके आगे प्रत्यक्ष होता हूँ? अपने बच्चों के आगे। अपने माने? अपने क्यों कहा? नहीं, अपना अपन जाहिर होता है कि वो ज्ञान सूर्य है, और किन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है? सूर्यवंशी बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता है, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, या उनको अपना बाप मानने वाले हों, उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों के सामने ही आऊंगा। ये तो बच्चे वो ही हैं जो कल पहले मेरे साथ मिले थे। क्या? जिनके स्वभाव संस्कार मेरे साथ नहीं मिलते हैं वो मेरे सन्मुख बैठते भी नहीं। मैं सन्मुख होकर ज्ञान सुनाता था, तुम ही गोपी गोपिकाएं आगे थे। गोपी वल्लभ तो मैं हूं ना। क्या कहा? मैं सन्मुख होकर ज्ञान सुनाता था और तुम ही गोपी गोपिकाएं मेरे आगे थे। प्रैक्टिकल में कब की बात बताई? यज्ञ के आज की बात बताई, जब तक प्रजापिता जीवित था। जब चला गया उस समय की बात नहीं है। तो गोपी वल्लभ तो मैं हूं ना, फिर इनसे गोप गोपियों के आगे प्रत्यक्ष हुआ हूं। बच्चे ही पहचान लेते हैं मैं हूं निराकार, इसलिए मुझे पहचानना भी जरा कठिन है। वैसे तो शरीर के नाम रूप की पहचान दी जाती है। यहां तो बाप खुद आकर समझाते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं। कब कहते हैं भागीरथ में आए, कब कहते हैं नंदीगढ़ में आए, हैं? एक में आए या दो में आए, गण कब कहा जाएगा? जब एक से ज्यादा हो तो गण कहा जाए, नंदी गण कहा जाए। तो दो बैल में तो नहीं आता हूं मैं, तो मुकर्रर रूप से एक में ही प्रवेश करता हूं। तो भागीरथ में आए या नंदीगण में आए? भाग्यशाली रथ में आता हूं। कब आता हूं वो फिर कह देते हैं सब में है। तो मैं सब में नहीं आता हूं। दुनिया का जो सबसे जास्ती भाग्यशाली मनुष्य है मैं उसमें आता हूं। सबसे भाग्यशाली क्यों कहा? गली गली की खाक छानता फिरे उसे भाग्यशाली कहेंगे? फिर क्यों कहा भाग्यशाली है? हाँ, विश्व का मालिक बनते हैं तो उनको भाग्यशाली कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया में तो और कोई हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी कोई भी विश्व का मालिक बन नहीं कहा। सिर्फ महत्वाकांक्षा तो की, लेकिन कोई विश्व का मालिक बन नहीं सके। तो भागीरथ नाम मशहूर है तो रथ तो जरूर चाहिए और रथ भी जरूर अलग चाहिए। इस रथ को ही अश्व भी कहते हैं। मुसलमानों में अश्व का नाम सुना है तो उन्होंने घोड़ा दिखाई दिया है। मुसलमानों ने अश्व लिया है और हिंदुओं में क्या गाया हुआ है? रथ गाया हुआ है। ऐसा अंतर क्यों है? हैं? मुसलमानों में अश्व गाया हुआ है। अश्व किसकी यादगार है? ये मन रूपी घोड़े की यादगार है। हुसैन है हमारा बाबा, वो हुसैन हसीन दुनिया स्थापन करते हैं और इस अश्व में आते हैं। इस अश्व में माने कौन है? अश्व इस अश्व में आते हैं। किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। तो ब्रह्मा को बैल कहो घोड़ा कहो बात एक ही हो गई। और वही घोड़ा शरीर छोड़ने के बाद फिर किस में प्रवेश करता है? प्रजापिता में प्रवेश करता है। तो मुसलमान घोड़े को उठा लेते हैं और हिंदू रथ को उठाते हैं, क्योंकि रथ तब कहा जाता है जब दसों इंद्रियां मौजूद हों। इंद्रियों के आधार पर, पूरे शरीर के आधार पर रथ कहा जाता है। जो सब प्रकार के संबंध हैं वो मनुष्यों में जोड़े जाते हैं या जानवरों में जोड़े जाते हैं? मनुष्यों में जोड़े जाते हैं। तो मुसलमान लोग घोड़ा निकालते हैं, समझते हैं हुसैन ने सवारी की थी। किसके ऊपर है? नहीं, हुसैन कौन हुआ? मुसलमान निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो वो समझते हैं अल्लाह मियां निराकार ने अश्व के ऊपर सवारी की थी। वो कहां की बात बोलते हैं? मुसलमान तो आकर के डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनेंगे, तो कहां की बात बोलते हैं? संगम में भी कौन सा समय ना, जब प्रजापिता शरीर छोड़ जाता है, यज्ञ छोड़ जाता है, उसके बाद यज्ञ किसके अंडर में चलता है? मुकर्रर रथ के अंडर में चलता है या घोड़े के अंडर में चलता है? घोड़े के अंडर में चलता है। इसलिए वो अश्व का नाम लेते हैं। हुसैन ने सवारी की अश्व के ऊपर। अब यहाँ लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। धर्म स्थापक जो भी होते हैं वो कोई भी आकर के लड़ाई करना नहीं सिखाते, वो लड़ाई आदि नहीं करते हैं। तो जब कोई भी धर्म पिता ने लड़ाई करना नहीं सिखाया तो ऊंचे ऊंचे बाप कैसे हिंसक युद्ध करना सिखाएगा? हम धर्म स्थापन करते हैं ना, बहुत मीठी मीठी बातें बच्चों को समझाई जाती हैं, हर बात में सिद्ध होता है कि परमात्मा एक ही है। कोई दान पुण्य करते हैं तो भी कहा जाता है कृष्णार्पणम श्री कृष्ण शरणम, ऐसे कहते हैं ना। अब बाप समझाते हैं इन दो का मिलन कैसे होता है। किन दो का मिलन? एक तो है भी कृष्ण प्रिंस है, फिर दूसरा है निराकार परमपिता परमात्मा। प्रिंस कृष्ण का नाम है और दूसरा फिर निराकार शिव है जो परमपिता है। अब दोनों इकट्ठे हो गए बरोबर, ज्ञान लेते लेते रात पूरी होती है और दिन में आकर के दिन में जाकर के भी कृष्ण बना। रात पूरी कब होती है? जब सूर्य उदय होता है, तो रात पूरी होगी। महाशिवरात्रि घोर अंधकार अंधकार की अंधेरी रात्रि पूरी होती है, और फिर बाद में पहले तो जन्म दिखाते हैं शिव का, फिर बाद में दिखाते हैं कृष्ण का। कुछ घंटों की देरी लगती है, तो इसलिए मनुष्य मुझे हुए हैं ईश्वर अर्पणाए या कृष्ण अर्पणाए कह देते हैं। न ईश्वर अर्पणाए की बात है न कृष्ण अर्पणाए की बात है, ये तो ईश्वर आकर के मुकर रथ में प्रवेश करते हैं। वो निराकार, वो कृष्ण तो हो गया साकार, तो भगवान किसको कहा जाए? अब दोनों को तो भगवान नहीं कह सकते। वो निराकार, वो तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, कृष्ण तो जन्म मरण में आता है। अब 84 जन्म भी कहते हैं, सब पुनर्जन्म जरूर लेंगे, पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बुद्धि तक अवश्य आना है, कलाएं भी उतरती जाती हैं। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आते जाते हैं, सत्युग के बाद चक्कर फिर करके अंत में कलयुग आना ही है। इस समय सब तमो प्रधान है, जो सतो प्रधान थे उन्हों के ही मुख्य मंदिर तीर्थ आदि बने हुए हैं। तमो प्रधान के मंदिर तीर्थ आदि थोड़े ही बनते हैं, कोई नेता के मंदिर तीर्थ आदि बनते हैं क्या? उनको तो कहां बैठा देते हैं, कहां खड़ा कर देते हैं, चौराहे पर रास्ते में खड़ा कर देते हैं, मंदिर थोड़े ही बनाते हैं। तो अवश्य है उन सतो प्रधान देवताओं ने इतनी सर्विस की होगी परमपिता परमात्मा के साथ, मंदिर में उनको बहुत मान देते हैं, मान बिठाते हैं, मानते भी हैं। अब शिवाजी ने तो तलवार से काम लिया है, उन्होंने हिंसक युद्ध किया या अहिंसक युद्ध किया है? हिंसक युद्ध किया, तो उनका मंदिर बनाते हैं क्या कि चौराहे पर खड़ा कर देते हैं? जैसे और नेताओं को चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, वैसे शिवाजी को भी चौराहे पर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि हिंसक हो गया ना। भगवान या कोई भी धर्म पिता आकर के हिंसक युद्ध करना नहीं सिखाते, न करते हैं। हिंसा करने वाले के लिए फिर चित्र आदि क्यों बनाते हैं? वे कोई रूहानी सर्विस करने वाले तो नहीं है। जिन चित्रों को महाराणा प्रताप का चित्र है, शिवाजी का चित्र है, उनको चित्र तो बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं कि नहीं? उनके चित्र क्यों बनाते हैं? वो रूहानी सर्विस तो करते नहीं, रूहानी सर्विस भल नहीं करते, फिर कौन सी सर्विस करते हैं? जिस्मानी सेवा तो करते हैं। तो देखो, कोई की भी बुद्धि काम नहीं करती है कि हिंसक मनुष्यों के चित्र क्यों बनाते हैं? कहते भी अहिंसा सबसे अच्छी है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म कौन सा है, किसको कहते हैं? जो अहिंसा परम धर्म है वो कौन सा धर्म है? कोई की बुद्धि नहीं चलती कि हिंसा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक काम कटारी की चिन्ह हिंसा और दूसरी स्थूल हिंसा। कोई अहिंसा वाला परिते परे प्राचीन धर्म था, उनको अहिंसा परमो धर्म कहा जाता था। अभी धर्म को तो गवर्नमेंट भी नहीं मानती है, कह देते हैं, क्या कह देते हैं? धर्म निरपेक्ष, हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, और कोई धर्म लिखला ही नहीं है। देवताओं का ही अहिंसा परमो धर्म था, काम कटारी न चलाना ऐसा कोई भी शास्त्रों में नहीं है, ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हम नग्न होने से बचाते हैं। अब द्रौपदी कोई एक तो नहीं थी, ये तो बाप आकर के सारी राजधानी स्थापन करते हैं, राजयोग सिखाने वाला बहुतों को पढ़ाते होंगे। मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान बिगर कोई भी फूलों के गांव में जा ही नहीं सकता। कांटे जब तक ज्ञान अमृत न पीवे तब तक फूल नहीं बन सकते। अब ये गीत तो रेडियो में भी आता है, इसका अर्थ तुम जानते हो। जगदम्बा की जीवन कहानी कितनी वंडरफुल है। जगदम्बा संगम की ठहरी, न सतयुग की है न त्रेता की है, फिर भी उनकी देखो महिमा इतनी है। और सतयुग आदि में है लक्ष्मी नारायण, वहां तो जगदम्बा हो नहीं सकती। लक्ष्मी को जगदम्बा कहा भी नहीं जाता, वो तो लक्ष्मी नारायण है तो राजा रानी है। कौनों को अपना प्रिंस होगा, किनको? लक्ष्मी नारायण को अपना प्रिंस होगा। तो सिद्ध होता है जगदम्बा जगत पिता रचने वाले रचयिता हैं, और वो लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले। ऐसी ऐसी बातें बड़ी युक्ति से क्लियर करके समझानी है। दुनिया को तो इन बातों का पता ही नहीं है कि जगदम्बा कब आई। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जगदम्बा है, या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जगदम्बा है? क्यों सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में क्यों नहीं?
सारी जगत सारे धर्म नहीं होता,
सारा जगत माना सारे धर्म 500-700 करोड़ की दुनिया सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होती ही नहीं है। तो बहुत जन्मों के अंत में जगदम्बा है, ब्रह्मा के लिए भी गाया जाता है। हम जानते हैं बरोबर ये जगदम्बा अपने 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है, ब्रह्मा की मुखवंशावली बनी है, इनका नाम रखा है जगदम्बा। सन्यासियों को जगत पिता व जगत टीचर नहीं कहेंगे, उनको तो शास्त्र सुनाने वाले टीचर कह सकते हैं। गुरु तो सदगति दाता एक ही है, समझाया जाता है सत्य का संग तारे को संग बोरे। तो सारी दुनिया डूबती जा रही है कुसंग में, अभी तुम सत्य के संग में आए हो। सत्य का संग तुम्हारे लिए बिल्कुल क्लियर है, बाकी सब हैं कुसंगी। बाप के पास रहते हैं, टीचर के पास भी जाते हैं, बाकी तारने बोरने की बात गुरुओं पर जाती है। गुरु सदगति के लिए, और वो फिर दुर्गति दे दे। जो भी कुसंग वाले हैं वे सब दुर्गति देते हैं। सदगति को वे जानते ही नहीं है, स्वर्ग नरक को जानते ही नहीं है। अपन तो जानते हैं जगत पिता से लेकर के, और सभी 84 जन्म लेते हैं, सबको तमो प्रधान में आना ही है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुमको तो ये ज्ञान अभी मिलता है, पहले तो तुम भी अंधे थे, बाबा ने अभी जज्जा बनाया है। अभी जानते हैं श्री कृष्ण जगदम्बा ने 84 जन्म कैसे लिए। धर्म स्थापन करने वाले तो बाद में आते हैं, तो उनके जरूर कम जन्म होंगे, अथवा पिछाड़ी में जो झाड़ में छोटी छोटी टारटारियां निकलती हैं उनके जन्म जरूर अवश्य कम होंगे। ये भी अपने जानते हैं कि ऐसे क्यों कहा जाता है कि लेफ्ट फॉर हेवन, जरूर वहां सुख होगा। उनको गाया ही जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम 38-62 की वाणी का तीसरा पेज। जरूर वो देवताएं अच्छे हैं, तब तो हम उनको माथा टेकते हैं। यदि वे भी भगवान और हम भी भगवान तो फिर माथा क्यों टेकें? आत्मा सो परमात्मा झूठ कह देते हैं ना। मनुष्य 84 जन्म जरूर लेते हैं, कोई ऐसे थोड़े ही कहेंगे सूक्ष्म पतनवासी भी जन्म लेंगे, नहीं वे जन्म नहीं ले सकते। तो बाबा का तो जरूर उनसे भी न्यारा होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी जयंती मनाते हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी देते हैं, वे जन्म मरण में कभी आते ही नहीं है। कौन ब्रह्मा विष्णु शंकर कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। इस समय हम कह सकते हैं कि इसने 84 जन्म पूरे लिए, किसने? ब्रह्मा ने। अब ये अंतिम जन्म है, इनका पहला जन्म है लक्ष्मी का और अंतिम जन्म ये है जगदम्बा का है। क्या कहा है?
अंतिम जन्म जगदम्बा,
पहला जन्म है लक्ष्मी का और अंतिम जन्म है जगदम्बा का। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग है, जगदम्बा का मंदिर अलग है और महालक्ष्मी की भी बात अलग है। देवताओं से तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, परंतु देवताएं देते हैं अल्पकाल का सुख और संगम भी ब्राह्मण तो 21 जन्मों का सुख देते हैं। ब्राह्मण है ब्रह्मा की मुखवंशावली, नंबर एक है सरस्वती जिसको जगदम्बा कहा जाता है। जगदम्बा के मंदिर में भी जाकर के समझाना चाहिए कि ये आई कब, इनके 84 जन्मों का वृत्तांत तुम बतला सकते हो? 84 लाख जन्मों का तो कोई वृत्तांत कर ही नहीं सकता। हम 84 जन्म सिद्ध करके बतलाते हैं, फिर उनकी हिस्ट्री भी लिखनी पड़े। सतो प्रधान इतने जन्म, फिर सतो में इतने जन्म, रजो में इतने जन्म, तमो में इतने जन्म, बरोबर हम लिख देते हैं, दुनिया क्या जाने इन बातों को। अभी हम कृष्ण के मंदिर में जाकर कहेंगे ये तो सत्ययुग में था, अभी तो कलयुग में है, तो जरूर कृष्ण ने पुनर्जन्म लिया होगा। क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते इस समय बैगर है। सब बैगरी करते हैं, तो अब कहते हैं परमपिता परमात्मा आप हमें माया के दुखों से छुड़ाओ, दुखी होने से ही हम बैगरी करने लग पड़े। तुम्हारा बैगर नाम प्रसिद्ध है इनका, है तुम्हारा किसको कहा? सन्मुख बैठने वालों का नाम प्रसिद्ध है। सन्मुख बैठने वाले तो 4.5 लाख हैं, सबका नाम प्रसिद्ध है बैगर के रूप में। हैं? शास्त्रों में प्रसिद्ध है फुल बैगर टू फुल प्रिंस, ये तो बाबा समझाते हैं। शास्त्रों में ये बात नहीं आई है, शास्त्रों में जो चित्र हैं और शास्त्रों में जो बातें आई हैं उनमें प्रसिद्ध है बैगर कौन है। शंकर को बैगर के रूप में दिखाते हैं, उनको बोला है तुम्हारा नाम बैगर के रूप में प्रसिद्ध है, तुमको बैगर जरूर बनना पड़े। किनको बैगर? किसको कहें? जिसके पास घर तन भी लुंजम पुंजम, धन मान मर्तबा कुछ भी न हो, सब की मत पर तुम नहीं चलते हो, तुम सब कुछ दे दिया उनका बन गए, फिर औरों की मत पर क्यों चलना है? बाप टीचर गुरु की मत तो मशहूर है, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। ये राजयोग है, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। तुम्हारी बातें जो सुनेंगे वो गदगद हो जाएंगे, बहुत उनको आनंद आवेगा, परंतु यहाँ से गए है और कलाश हो जाता है। माया भी कोई कम नहीं है, कोई में तो थोड़ा बीज बोया जाता है फिर कब न कब सलाह निकल आती है। ऐसे भी होता है, टाइम तो अवश्य चाहिए, जब तक ज्ञान की दवा हो रही है तो कोई भी निष्फल नहीं जावेगा, स्वर्ग में अवश्य आवेगा। बीज बोया हुआ होगा तो दुख के समय याद जरूर आवेगा, इसलिए ऐसे कभी नहीं समझना चाहिए हमने इतना ज्ञान सुनाया कोई को बुद्धि में बैठा नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, हमारी कोई सुनता ही नहीं। नहीं, तुमने जो सुनाया है जो भी बीज डाला है जब टाइम आवेगा तो उनको बहुत याद आवेगा, एक एक बात तुम्हारी बड़ी वंडरफुल है। कोई अच्छी रीति समझे तो संशय बुद्धि से निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए, परंतु सर्विस करने वालों की बुद्धि में पॉइंट जरूर ठहरने चाहिए। अच्छा, ओम शांति।